Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
जहाँ निमित्त कारण कारण अलग होकर कार्य को पैदा करता है, उपादान कारण स्वयं कार्य बन जाता है। जैसे सोना है, स्वयं अलंकार बन जाता है। सोना अलंकार बन के फिर सोना नहीं रहता, वो अलंकार के रूप में रहता है, वो अलग नहीं होता, अलंकार से अलग नहीं होता है, इसलिए उपादान कारण है। और बनाने वाला जो स्वर्णकार है वो निमित्त कारण है, जो स्वर्णकार है वो निमित्त कारण, और जो सोना है उपादान कारण, और अलंकार बने वो कार्य बना। अब ये जो हमारे सामने कार्य कारण भाव का सिद्धांत है, एक कारण वस्तु है दूसरी कार्य वस्तु है, तो बालक नचिकेता कहना चाहती कि जो तत्व हैं जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं, वो न किसी का कारण है और वो न किसी का कार्य। माने कारण होना भी एक विकृति है और कार्य होना भी एक विकृति है। बालक नचिकेता बहुत सूक्ष्म जो वास्तविक तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसके बारे में सूचना दे रहे हैं। कारण होना भी एक विकृति, क्योंकि आप ईश्वर को कारण बनाएंगे तो कारण में विकृति आए बिना वो कार्य नहीं बनता है। अब आप सोने को विकृत किए बिना अलंकार कैसे बनाएंगे? बनता तो सोना ही अलंकार है, लेकिन आपको सोने को कुछ तो करना पड़ेगा, उसमें कुछ तो क्रिया देनी पड़ेगी, आपको उसको गर्म करना पड़ेगा, न भी करे तो उसमें मोड़ना पड़ेगा, उसको क्रिया देनी पड़ेगी, तब जाके वो कारण कार्य बन सकता है। कारण अविक्रिय रहकर, कारण अक्रिय अविक्रिय रहकर वो कार्य नहीं बन सकता है। एक छोटा सा बीज हम जमीन में डालते हैं, पहले उसमें क्रिया आती है और उसके बाद उसमें विकार पैदा हो जाता है, फिर वो बीज नहीं रहता है। क्रिया और विकार में अंतर है, क्रिया और विकार में अंतर है। क्रिया के बाद वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो तो क्रिया है, और क्रिया के बाद वस्तु में परिवर्तन आया तो विक्रिया है। जैसे दूध के अंदर आपने जल डाला, थोड़ा सा आपने 10 बूंद जल दूध के अंदर डाला और जल हिला, अब वो क्रिया है। लेकिन उसी के अंदर आपने मट्ठा डाला था, अब वो क्रिया नहीं रही सामान्य, वो विक्रिया हो गई। अब आप उसको दूध नहीं कहेंगे, ये दूध आप विकार बन गया, अब वो खट्टा हो गया, वो सारी चीजें बदल गई वहां। इसलिए क्रिया के बाद विक्रिया, उसमें परिवर्तन, इसलिए कारण में क्रिया के बिना, कारण में विक्रिया के बिना कारण कभी कार्य बनता ही नहीं है। बीज पूर्ण रूप से बीज रहकर कभी वो पौधा नहीं बन सकता है, उसमें पहले क्रिया हो जाती है। आप बीज बोएंगे और वहां संयोग है, बिना दूसरे के संयोग कारण में क्रिया संभव नहीं। कारण में क्रिया अन्य पदार्थ संयोग सापेक्ष है, कारण में क्रिया अन्य पदार्थ संबंध सापेक्ष है। जैसे आपने बीज रखा और उस बीज के साथ जमीन का, उसके साथ गीली मिट्टी का संबंध ना हो, केवल मिट्टी के संबंध से कुछ नहीं होता है, यदि सूखी मिट्टी में आप बीज डालो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, गीली मिट्टी का संबंध जब उस बीज के साथ हो, गीली मिट्टी का संबंध जब बीज के साथ होता है तब उसमें क्रिया पैदा हो जाती है, उस बीज में क्रिया पैदा हो जाती है। वो गीली मिट्टी का जो संबंध है वो बीज के अंदर क्रिया पैदा करता है और वो क्रिया विकार बना लेती है, उसको विकृत कर देती है, फिर वो एक उसके अंदर अंकुर आ जाता है, फिर वो उसके ऊपर अपना जो कवर होता है ऐसे उठ करके वो खोल के बाहर आ जाता है बीच। तो इतनी सारी जो क्रियाएं उसके अंदर विक्रियाएं हुई, वो कार्य बना, एक पौधा बना, एक अंकुर बना, वो झाड़ बना, उसने फल पौधे बहुत सारी चीजें पैदा कर दी, लेकिन उसके मूल में वो संबंध, मिट्टी का संबंध, गीली मिट्टी का संबंध है, उसके अंदर क्रिया है, उसके अंदर विक्रिया है, और उसके बाद वो सारी चीजें पैदा हो। और एक तीसरी चीज इसके अंदर छिपी हुई है, वस्तु परिच्छिन्न हुए बिना उसके अंदर क्रिया संभव नहीं है। वस्तु का छोटा होना बहुत जरूरी है, तब वो ज्यादा सक्रिय होता है। जितना वो बढ़ता जाता है उतनी उसकी क्रिया शक्ति समाप्त होती जाती है। मैं आपको सामान्य लौकिक उदाहरण में समझा दूं, जितना आदमी पतला होगा उतना ज्यादा सक्रिय होगा, और जितना आदमी मोटा होता जाए उतना ज्यादा वो अपनी क्रिया शक्ति खोता जाता है। दुनिया में ये सामान्य नियम है, जितनी छोटी चीज होगी उतनी हल्की होगी, फू मार दो आप उड़ जाएगी वो, और वो जितनी बड़ी होती जाएगी वो चीज अपनी क्रिया शक्ति खोती जाएगी, जितनी बड़ी होती जाएगी। और यदि हम ब्रह्म इतने बड़े हो जाए तो यही तो रहस्य है, जो अकर्ता अभोक्ता अक्रिय हम समझते हैं अपने आप को, उसका यही रहस्य है कि ब्रह्म तत्व व्यापक है, इसलिए आकाश में गमन की क्रिया संभव नहीं है, पृथ्वी में संभव है, क्योंकि पृथ्वी छोटी है, अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरे जगह पर चली जाती है, लेकिन आकाश कहां जाएगा, क्योंकि आकाश तो व्यापक है। इसलिए व्यापकत्वात् अक्रियत्वम, आकाश में जो अक्रियत्व है उसका मूल कारण उसका व्यापक होना है। और जब आत्म तत्व के बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में जब सुनाना था श्रुति को, आपको सूचना देनी थी, तो उदाहरण खोज रही थी श्रुति की, ऐसा कौन सा उदाहरण दिया जाए जिससे कि आत्मा के अक्रियत्व को बताया जा सके। उनके सामने उदाहरण एक ही था, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह वो सर्वगत मन व्यापक। यहां सर्वगत शब्द का अर्थ ये नहीं सर्वत्र जाता है, ये तो ऐसा अर्थ नहीं निकलता है, सर्वगत, यहां सर्वगत शब्द का अर्थ ही है व्यापकत्व, वो व्यापक है आत्म तत्व, इसलिए वो अक्रिय है, इसलिए वो निष्क्रिय है। अब आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को यदि हमें कारण बनाना है तो आपको कितनी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो वो परिच्छिन्न हो, दूसरा उसके साथ किसी का संबंध हो, दूसरा संबंध हो, और संबंध के बाद उसमें क्रिया हो, उसमें विकार हो, और फिर वो कुछ बन जाए, वो फिर कुछ बन जाए, तब उसमें कारणता आएगी। और जो चीज बना होगा उसको कार्य कहेंगे, उसको कार्य कहेंगे। इसलिए बालक नचिकेता ने कहा उस आत्म तत्व में कोई विक्रिया नहीं, वो व्यापक हैं, इसीलिए वो कारण से भी परे हैं, वो कारण से भी परे हैं, वो अकारण है तत्व। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तत्व अकारण भी हैं और वो तत्व अकार्य भी हैं, कार्य से भी परे हैं। बोले वो स्वयं में किसी का, कई बार ऐसा होता है कि वस्तु कार्य तो है लेकिन किसी को पैदा करने वाली नहीं, ऐसा भी तो हो जाता है। जैसे उदाहरणों में आपको बताएं, ऐसे बहुत सारे बीज हैं, पैदा तो होते हैं लेकिन वो किसी दूसरी चीज को पैदा नहीं करते। आपने कनेर सुना होगा, कनेर का फूल, वो कनेर के फूल से कुछ पैदा नहीं होता है क्योंकि उसकी डाली लगती है, कनेर की डाली लगती है, डाली से पौधा बनता है, फूल तो आया और उसमें फल भी आता है, लेकिन वो फूल और फल दूसरे को पैदा नहीं करता है, तो आकार्य हुआ कि नहीं, वो अकारण हुआ। वो कार्य तो है लेकिन दूसरे को पैदा नहीं किया उसने, तो अकारण तो है। इसलिए कई वस्तु अकारण होती हैं, कारण से परे होती हैं लेकिन कार्य होती है। इसलिए दूसरा भी निषेध कर दिया बालक नचिकेता ने। बालक नचिकेता ने कहा कि वो तत्व जैसे कारण नहीं है वैसे कार्य भी नहीं है, वो किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं है। वो ऐसा जैसे आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं जायते, सबसे पहले वस्तु का जो विकार है ना वो जायते, जायते के बाद फिर अस्थि, अस्थि के बाद वर्धते, वर्धते के बाद विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये सारी प्रक्रियाएं पैदा होती हैं और उसका मूल जो है ना जायते, अस्थि विवर, ये सारी चीजें जो है कार्यात्मक, कार्यात्मक ये विकार है, सारे वस्तुओं के विकार है। लेकिन बालक नचिकेता कहते हैं जैसे वस्तु पैदा होने के बाद उसका अस्तित्व होता है, दुनिया की कोई भी चीज आप सामने रखे वो पैदा हुए बिना उसका अस्तित्व नहीं होता है, वो कार्य है, इसीलिए है वस्तु। और वो वस्तु यदि कार्य ना होती तो वस्तु ही नहीं होती। लेकिन ब्रह्म तत्व ऐसा नहीं है, पैदा हुआ इसलिए है ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैं पूछूं आप क्यों हैं, आप इसका क्या उत्तर देंगे? आप हैं, आप क्यों हैं, आप इसका क्या उत्तर देंगे? आप आत्मा की दृष्टि से छोड़ो, आप शरीर की दृष्टि से, जो आप अपने आप को समझते हैं उस दृष्टि से, आपका ये शरीर का होना आप परिचय जब देते हैं तो शरीर की दृष्टि से देते हैं। आप कहीं गए एयरपोर्ट और सामने वाला पूछे आपको आप कौन है, आप क्या परिचय दोगे? मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वहां पर वो परिचय नहीं चलेगा, वो बोलेगा आपका परिचय दीजिए जो हमको आंखों से दिखाई दे, आपका परिचय क्या है, आप क्या परिचय देंगे? आप अपना यही परिचय देंगे, शरीर का परिचय। तो आप हैं तो आप शरीर का परिचय, तो आप क्यों हैं? तो आप यही उत्तर दे सकते हैं कि हम पैदा हुए इसलिए हैं, ये जो शरीर है क्यों है, पैदा हुआ इसलिए है और कोई कारण नहीं है। हमारे होने का कारण पैदा होना है, यदि हम पैदा न होते तो हमारा होना नहीं होता। इसलिए दुनिया की सारी चीजें उत्पत्ति सापेक्ष है, ब्रह्म भिन्न आत्म भिन्न जो चीजें दुनिया में हैं, जो पैदा हुई हैं, उसके होने का आधार उत्पन्न होना मात्र है, उत्पत्ति सापेक्ष सारी चीजें हैं। और बालक नचिकेता यही कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं जिस तत्व को पाना चाहता हूं वो चीज उत्पत्ति सापेक्ष नहीं है, कार्य से भी भिन्न है, वो आत्म तत्व कार्य से भी भिन्न है। ये कहने का मतलब ही है वो चीज उत्पत्ति सापेक्ष नहीं, उसका जो अस्तित्व उत्पन्न होने के कारण नहीं है, उसका जो अस्तित्व है उसका जो होना है वो उत्पत्ति सापेक्ष नहीं है, माने उत्पन्न होने के कारण वो है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद आया हुआ अस्तित्व तत्व का मानेंगे ना तो मानना पड़ेगा, वो थोड़े समय के बाद समाप्त होने वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि नियम है जो वस्तु पैदा होती है वो वस्तु समाप्त होती है, वो मिटती है, वो मरती है। इसलिए एक ही शब्द में बालक नचिकेता ने कहा कि वो तत्व जो उत्पत्ति सापेक्ष नहीं है और जो तत्व कभी मरने वाला भी नहीं है, उस तत्व के बारे में मैं जानना चाहता हूं। अन्यत्र अस्मात् कृतात् अकृतात्। और तीसरी चीज रखी अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। वो तत्व काल से भी परे हैं, वो तत्व काल से भी परे हैं। हमारे सामने तीन काल हैं, वर्तमान काल, अतीत काल और भविष्यत काल। तो आप काल की जो स्थिति है ना, नब्बे न्यायिकों ने काल को उपाधि देके समझाया, दिक उपाधित्वम, अब जैसे कि इसको अब समझे, जैसे हम दिशा को समझना चाहते हैं, तो दिशा को समझना चाहते हैं पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर हम समझते हैं। तो ये जो दिशा का भेद है ना, ये दिशा का भेद कहीं दूसरी चीजों को लेकर के हैं, औपाधिक भेद है, निरपेक्ष उसमें भेद नहीं है। अब ऐसे ही काल में जो भेद है ये भी औपाधिक भेद है, समय तो एक ही है। समय अब जैसे पंचदशी में एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया है, आप जिसको बोलते हैं क्षण क्षण क्षण, आप जिसको बोलते हैं मिनट, आप जिसको बोलते हैं घंटा, आप जिसको बोलते हैं दिन, आप जिसको बोलते हैं सप्ताह, आप जिसको बोलते हैं महीना, आप जिसको बोलते हैं वर्ष, ये क्या है? ये समय है। आप जिसको क्षण बोलते हैं वो भी समय है, और आप जिसको एक घंटा बोलते हैं, दिन बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं या एक वर्ष बोलते हैं, ये आपके सामने समय है। और इस समय को कैसे नाप लेते हैं हम? इसलिए नव्य न्यायिकों ने एक बहुत सूक्ष्म बात बोली, उन्होंने कहा वस् क्रिया उपाधित्वम, क्रिया के बिना बोले काल का पता चलना संभव नहीं है। क्रिया के बिना काल का पता चलना संभव नहीं। आप जैसे सूर्य निकलता है और निकल के जैसे जैसे ऊपर आने लगता है ना, तो आपको समय का पता चलता है। अच्छा, और सूर्य निकलना ही बंद कर दे तो आपके सामने सूर्य ना हो, आपके सामने ये तारे नक्षत्र आदि कुछ भी ना हो, घड़ी की बातें छोड़ो, तो उस समय आपको मालूम कैसे पड़ेगा, समय का पता कैसे चलेगा? इसलिए नैयायिकों ने बहुत गहरी बात बोली। उन्होंने कहा कि हम सुबह से उठ के क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के द्वारा समय को नाप लेते हैं। अच्छा, कि आपको देखे, ओहो ये आदमी कितने साल का होगा, 50 साल का होगा, ये 50 साल का होगा, 50 साल हमने कैसे नापे? उसके शरीर को देख के, ओ ये बड़ा है, क्रिया इसकी क्रियाएं हुई, इतना इतने साल में इतना बड़ा, तो उसकी जो क्रियाएं, क्रिया के द्वारा ही हम काल को नाप लेते हैं। और क्रिया ना हो और वो क्रिया जो है ना वस्तु के बिना संभव नहीं। इसलिए नैयायिकों ने कहा कि क्रियावत्वम, भाई क्रिया जो है वो द्रव्य का आधार लेके पैदा होती है, किसी भी मूर्त वस्तु का आधार लेके क्रिया पैदा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रियावान पदार्थ और उसको लेके हम समय को गिन लेते हैं, ये समय। अब हमारे सामने ये समय, वस्तु पैदा होती है तो पैदा होने के पहले का समय, वस्तु मर जाती है मरने के बाद का समय, है तो एक ही काल, लेकिन हमने औपाधिक रूप से उसको क्या बोला, ये अतीत। वस्तु के पैदा होने के पहले का समय वो कहलाता है अतीत, और जिस काल में वस्तु है वो समय कहलाता है वर्तमान काल, और जो आने वाला काल है भविष्य। तो बालक नचिकेता कहती ये तीन काल है, बोले काल से भी परे परमात्मा है, वो अतीत नहीं है, वो अतीत नहीं है, वो वर्तमान नहीं है और वो भविष्य भी नहीं। ये जो तीन काल है ये भी औपाधिक है, वो वस्तु काल से परे, इसलिए कालकृत परिच्छेद से परे है। ऐसा आपको एक वेदांत के शब्दावलियों में ये कहा जाता है, देशकृत उपाधि से अपरिच्छिन्न, कालकृत परिच्छेद से रहित और वस्तुकृत परिच्छेद से रहित। अब इसको एक उदाहरण में हम समझ ले तो इस आत्मतत्व के बारे में बहुत जल्दी हम समझ लेंगे। आप एक वस्तु ले लीजिए, वेदांत परिभाषा एक ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बड़ा है कठिन हो वेदांत परिभाषा, उसमें इसका बड़ा सविस्तर वर्णन आया है कि किसी कोई वस्तु किसी काल में होती है कोई वस्तु किसी काल में नहीं होती है, वो वस्तु कालकृत परिच्छेद से युक्त होती है। माने काल उस वस्तु का परिच्छेद कर देता है, वो टुकड़ा कर देता है। ये वस्तु कहां है? बोले अभी है। पहले थी? बोले नहीं थी। भविष्य में रहेगी क्या? बोले नहीं रहेगी, वर्तमान में। तो जो वस्तु पैदा होती है वो वस्तु हमेशा एक काल में रहती है। जो वस्तु पैदा होती है वो वस्तु हमेशा एक काल में रहती है, या तो रहेगी भूतकाल में, या तो रहेगी वर्तमान काल में, या तो रहेगी भविष्य काल में। वस्तु पैदा हो गई तो वस्तु पैदा होने के बाद पता निश्चित है हमें, ये वस्तु अतीत में नहीं है, वर्तमान में है ना। अब जैसे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बारे में हम जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? थे। महात्मा गांधी जी के बारे में जब भी हमारे मन में संवेदना होगी वो यही होगी कि थे। माने महात्मा गांधी जी की स्मृति अतीत के काल में ही संभव है। अतीत काल विशिष्ट होके ही महात्मा गांधी जी की प्रतीति होगी, अतीत काल विशिष्ट होके। इसलिए आप महात्मा गांधी जी के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे तो थे शब्द का प्रयोग करेंगे। आप अस्थि शब्द का प्रयोग, है शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जब भी महात्मा गांधी की आपको प्रतीति होगी, उस प्रतीति के विषय के रूप में अतीत काल होगा। इसलिए थे शब्द का प्रयोग, राम राजा थे, तो वो अतीत की स्मृति जुड़ के ही आपको राम का बोध होगा। और आप कल की अवतार होगा, जब आप कल की भगवान के बारे में सोचेंगे कि हमारे कल की भगवान आने वाले है। अब कल की भगवान आए नहीं है, वो वर्तमान हुए भी नहीं, अतीत की तो बात ही छोड़ो, अब वो आएंगे। इसलिए उनके लिए आप शब्द का प्रयोग करोगे तो भविष्य, कल की भगवान होंगे तो उनके लिए भविष्य काल का प्रयोग करें। इसलिए भविष्य काल से जुड़ के उनकी प्रतीति होगी। और हम सब लोग अभी है, अभी हमारे साथ भविष्य लगेगा न हमारे साथ अतीत लगेगा, हमारे साथ लगेगा वर्तमान। और इसीलिए हम एक ही काल में हैं, हम वर्तमान काल में, और वर्तमान काल से जब हम चले जाएंगे तो। और ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ये तीनों कालों में है। आत्म तत्व ब्रह्म तत्व तीनों कालों में, भूत में है कि नहीं, वर्तमान में और भविष्य में। इसलिए ये काल से अपरिचिन्न है। जो वस्तु केवल एक काल में होती है ना, केवल एक काल में, वो उत्पत्ति विनाशशाली होती है। और जो वस्तु नित्य होती है वो हमेशा तीनों कालों में विराजमान। बालक नचिकेता ने कहा, मैं उस तत्व के बारे में पूछना चाहता हूं जो तीनों कालों में रहेगा, जो हमेशा रहेगा, जो सदा चिरंतन पुरातन शाश्वत जो आत्म वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु है। बोले उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। अन्यत्र भूतात् अन्यत्र भव्याच्य, जो भूत काल से भी परे हैं और जो भविष्यत काल से भी परे, ऐसी वस्तु आप पश्यसी देखते हो, या वर्तमान काल का प्रयोग किया। अब इन्होंने वर्तमान काल का प्रयोग किया। पहले उन्होंने तत्व के बारे में जितना वो जानते थे अच्छी तरह से और वास्तविक रूप से जानते थे उसको रखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी चीजें मैं जानता हूं लेकिन अनुभव नहीं है, परोक्ष है लेकिन अपरोक्ष नहीं है। कितनी ऊंची चीजें जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं है, और अनुभव के बिना शोकनाश और आनंदावाप्ति संभव नहीं है, मोक्षोपलब्धि संभव नहीं है, और गुरु का समर्थ होना भी जरूरी है। इसलिए उनका यत पश्यसी, जो आप अपने जीवन में देखते हो, ऐसा कबीर जी ने बोला ना, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखण देखी। तो यही बात बोली नचिकेता ने कि जो आखण देखी होगी ना, वो कागज की लेखी मत बताना, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो चीज यत पश्यसी तद वदा। ये प्रश्न इन्होंने किया और इसके उत्तर में आचार्य ने 15वें श्लोक में इसका उत्तर दिया, बड़ा सुंदर है। अभी आप एक थोड़ा सा जप करेंगे, एक माला, आप सीधे बैठ जाएं। अपना नियम प्रतिदिन हम लोग एक माला जप किया करेंगे, उसके बाद फिर अपने इस कार्यक्रम को विराम। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। 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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय।
ओम ह्रीम नमः शिवाय। राम 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।